हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आदित्य वहां हॉस्पिटल रूम से बाहर निकला, लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले उसने एक बार फिर से पीछे मुड़कर सुनैना की तरफ देखा। वो होश में थी, लेकिन पूरी तरह से ठीक बिल्कुल भी नहीं, इसलिए उसकी पलकें भारी हो रही हैं और उसकी आंखें भी बंद होती जा रही हैं। और आदित्य उसे इस तरह से नहीं देख पाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने जल्दी से दरवाजा बंद करके अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। आदित्य जब रूम से बाहर निकला तो फिर डॉक्टर ने सुनैना के इंजेक्शन लगाया और वो दोबारा से बेहोश हो गई, या फिर उसे इंजेक्शन की वजह से नींद आ गई। आदित्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन बाहर आने से पहले उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और एकदम स्ट्रांग बनकर वहां रूम से बाहर निकला और एक तरफ बढ़ा। और तभी उसने देखा कि नैना की अब तक वहां पर आ गई है और शायद उसे भी इस बारे में पता चल चुका है कि सुनैना को होश आ गया है। इसलिए आदित्य को बाहर आते देख नैना ने पूछा, क्या हुआ, सुनैना को होश आ गया है ना आदित्य, वो ठीक तो है ना, और क्या मैं भी उससे मिल सकती हूँ क्या, बताओ आदित्य प्लीज कुछ बोलो। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ वो डॉक्टर उसे ट्रीट कर रहे हैं, वो अब कोमा में नहीं है। इतना बोलकर आदित्य वहां से थोड़ा आगे आ गया और उससे पूरी बात जानने के लिए अनय भी उसके पीछे आया, लेकिन नैना उसके पीछे नहीं आई क्योंकि वो समझ गई आदित्य को जितना बताना था उतना उसने बता दिया है, अब और कुछ भी पूछेगी तो आदित्य कुछ नहीं बोलने वाला। इसलिए वो वहां से दरवाजे की तरफ बढ़ गई और दरवाजे के पास खड़ी होकर अंदर की तरफ देखने लगी। नैना के साथ वहां पर खड़ी स्वीटी भी सुनैना का ट्रीटमेंट होते हुए देखने लगी, क्योंकि कांच की खिड़की से उन दोनों को ही आर पार का दिख रहा है। और उसने देखा कि जैसा कि आदित्य ने बताया था, सुनैना दोबारा से बेहोश हो गई है और उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है और उसके आसपास डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ खड़ा हुआ है। अपने सामने का वो सीन देखकर नैना ने बस एक ठंडी आह भरी और वहां शीशे पर अपना हाथ रखा। उसके पीछे खड़ी स्वीटी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी दी। स्वीटी के बात सुनकर नैना ने बस हल्के से अपना सिर हिलाया और कुछ भी नहीं बोली। आदित्य के सामने जाकर खड़े होते हुए अनय ने भी उससे थोड़े बहुत सवाल पूछे, लेकिन आदित्य ने उसे भी बस उतना ही बताया जितना कि नैना को बताया था। और उसके बाद वो आगे आया और अरविंद के साथ वो कहीं जाने की बात करने लगा। उसके कहीं जाने की बात करते हुए सुनकर अनय ने कहा, कहाँ जा रहे हो आदित्य, कहीं भी जा रहे हो मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा और मुझे कुछ नहीं सुनना। आदित्य ने तुरंत ही मना करते हुए कहा, नहीं अनय, मैं इन सब में तुम्हें शामिल नहीं करना चाहता और बस इतना समझ लो, कुछ अधूरा काम है रह गया था, उसे ही पूरा करने जा रहा हूँ और वो भी बहुत ज़रूरी है। अनय ने अपनी बात कही, ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ ना, हर उस चीज़ में शामिल जिसमें तुम जुड़े हुए हो, फिर चाहे तुम चाहो या ना चाहो। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखकर एकदम सीरियस होते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अभी तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, तुम भी काफ़ी टाइम से यहाँ पर ही हो और रात को बस कुछ देर के लिए ही घर गए थे, इसके अलावा तुम्हें भी और ज़रूरी काम होंगे ना, वो निपटा लो जब तक, और हाँ अपनी बीवी पर भी नज़र रखना, हो सकता है तुम्हारी पीठ पीछे वो। आदित्य अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अनय की बात काटते हुए बीच में बोल पड़ा, आदित्य प्लीज मुझे मनस्वी के बारे में कुछ नहीं सुनना, मेरा मतलब है हमें अभी उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। उसके इस तरह बीच में बोलने पर आदित्य भी रुक गया और उसने इस बारे में कोई बात नहीं की। उसने अनय के रिएक्शन को नोटिस किया, वो थोड़ा सा एग्रेसिव साउंड कर रहा था, लेकिन साथ ही अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश भी। आदित्य ने सिचुएशन समझते हुए बात का टॉपिक चेंज करते हुए कहा, ठीक है नहीं करते हैं अभी इस बारे में बात, लेकिन फिर भी मैं नहीं जाऊंगा कि तुम अभी मेरे साथ आओ, तो मैं फिलहाल अभी घर जाना चाहिए। आदित्य के बार बार मना करने पर अनय भी अच्छी तरह से समझ गया कि वो उसे अपने साथ लेकर नहीं जाएगा, इसलिए उसने भी और जिद और बहस नहीं की और सिर्फ हमें अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसने सोचा कि उसका मनस्वी से बात करना भी जरूरी है, नहीं तो ऐसे उन दोनों के बीच गलत फहमियाँ बढ़ जाएंगी और आदित्य भी हमेशा मनस्वी को गलत ही समझता रहेगा, जबकि अनय को कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि मनस्वी पहले से काफी चेंज हो चुकी है। उन दोनों के बीच बात क्लियर होने के बाद आदित्य अरविंद के साथ पहले ही वहां से निकल गया और उसके बाद विवान, स्वीटी, नैना, नदीम को वहां पर छोड़कर अनय भी अपने घर के लिए निकल गया। अनय अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि घर अभी भी एकदम खाली है, वहां पर नौकरों और सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई भी नहीं था। अनय अंदर आया और सीधा अपने रूम में चला गया और वो काफी थका हुआ था, इसलिए आराम करने के लिए वो सीधा कमरे में ही आ गया और बिना चेंज किए ऐसे ही बेड पर लेट गया। उसने अपना मोबाइल फोन निकालकर मनस्वी का नंबर डायल किया, लेकिन कल की ही तरह आज भी उसकी मनस्वी से बात नहीं हो पाई। उसे समझ आ रहा है कि आदित्य की कही हुई बातों से मनस्वी भी बहुत ज्यादा हर्ट है, इसलिए वो उससे मिलकर उसे समझाना चाहता है और उसे थोड़ा अच्छा फील करवाना चाहता है, लेकिन तब से उसे मौका ही नहीं मिला। और यही सब सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चल पाया। कुछ देर बाद, पूरे 24 घंटे के बाद मनस्वी भी घर वापस आई और उसे लगा था कि अनय घर पर नहीं होगा, वो अभी भी आदित्य के साथ होगा, इसलिए वो बड़े ही आराम से घर के अंदर आई और सीधा अपने रूम में गई। वो दोनों अभी भी एक साथ शेयर रूम में ही रहते हैं। अनय ने भी रूम का दरवाज़ा बंद नहीं किया था, इसलिए दरवाज़ा खुला हुआ है जैसा कि मनस्वी छोड़ कर गई थी, इसलिए वो तुरंत ही अंदर आ गई। लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर आई, उसने देखा कि सामने बेड पर अनय लेटा हुआ सो रहा है। उसे वहां सामने बेड पर देखकर मनस्वी दरवाजे पर ही रुक गई और उसकी तरफ ही देखने लगी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अनय घर वापस आ गया होगा, लेकिन अभी इस वक्त सोता हुआ वो बहुत ही इनोसेंट लग रहा है और काफी ज्यादा थका हुआ भी। दरवाजे से कुछ कदम आगे बढ़ते हुए मनस्वी एकटक उसकी तरफ ही देख रही है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो वहीं दरवाजे से कुछ कदम आगे आकर रुक गई और वहां पर रुककर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप से कहा, नहीं मनस्वी, भूल जाओ तुम उसे, तुम उसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो। आदित्य बिल्कुल सही कह रहा था, तुमने आज तक कुछ भी अच्छा नहीं किया है उसके साथ, तो बदले में तुम कैसे उम्मीद रख सकती हो कि वो तुम्हारी खुशी के लिए अब तुम्हारा साथ दे और जैसा तुम चाहती हो फिर से वैसा ही बर्ताव करे। अपने आप से ये बात बोलते हुए मनस्वी फिर से कुछ कदम पीछे हो गई और एकदम दरवाजे से लग कर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें खोली और फिर से सामने बेड पर सोते हुए अनय की तरफ ही देखने लगी। उसने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, नहीं हूँ मैं तुम्हारे लायक और शायद कभी हो भी नहीं सकती। तुम मुझसे कई गुना अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करते हो और वो सारी खुशियाँ भी जो आज तक तुम्हारे हिस्से में नहीं आई, शायद मेरी वजह से।
आदित्य की बातों को याद करते हुए अपने मन में ये सब कुछ सोचकर मनस्वी बहुत ही ज्यादा मायूस हो गई, लेकिन वो अभी भी सामने बेड पर लेटे हुए अनय की तरफ ही देख रही है और उसकी तरफ देखते हुए वो उसमें एकदम खो जी गई है। लेकिन तभी अनय करवट बदलता है और उसका चेहरा दरवाजे की तरफ हो जाता है। वो हल्का सा कसम साकर अपनी जगह पर थोड़ा सा हिलता डुलता भी है, तो मनस्वी को लगता है कहीं वो जाग ना जाए, इसलिए वो जल्दी से पीछे मुड़कर बाहर निकलने लगती है। लेकिन दरवाज़ा बंद होता है और वो ध्यान नहीं देती तो दरवाजे से उसका सिर टकरा जाता है।
आउच, मेरा सिर, आह!
पीछे मुड़ते ही मनस्वी के सर से दरवाज़ा टकरा जाता है तो उसके मुंह से एक आह निकलती है और ये आवाज़ सुनकर अनय की नींद भी खुल जाती है। मनस्वी वहीं दरवाजे पर खड़ी हुई अपना माथा रगड़ रही है और दर्द की वजह से उसका मुंह भी बना हुआ है। अनय ने नींद टूटते ही अपनी आंखों के सामने वो नज़ारा देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें, ठीक तो हो ना? अनय की आवाज़ सुनकर मनस्वी एकदम ही हड़बड़ा जाती है और बिना पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखे ही बोली, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। इतना बोलते हुए वो एक हाथ अपने माथे पर रखते हुए रूम का दरवाज़ा खोलने लगी, लेकिन उसने जैसे ही दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, एक और हाथ उसके हाथ के ऊपर आया और मनस्वी दरवाज़ा खोलते हुए रुक गई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो अनय उसके पीछे एकदम नज़दीक खड़ा था। उसकी इतनी नज़दीकी की वजह से मनस्वी को अपनी सांसें भारी होती हुई सी महसूस हुई और वो कुछ भी बोल नहीं पाई। साथ ही उसे अपना गला भी सूखा हुआ सा लग रहा था, जैसे कि वो कहीं कर फंस गई हो। मनस्वी की आंखों में देखते हुए अनय ने उससे कहा, बात करनी है मुझे तुमसे, रुको, ऐसे कहाँ भाग रही हो? अनय की ये बात सुनकर मनस्वी उसकी तरफ देखकर थोड़ा अटकते हुए बोली,
मैं कहाँ कहाँ भाग रही हूँ और मैं क्यों भागूंगी तुमसे?
बड़ी मुश्किल से मनस्वी के मुंह से सिर्फ इतने ही शब्द निकले और फिर वो उससे नजरें चुराती हुई दूसरी तरफ देखने लगी। उसके इस तरह नजरें चुराने पर अनय ने अपना एक हाथ उसके गाल पर रखा और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए फिर से उसकी आंखों में देखकर बोला, अच्छा भाग नहीं रही हो तो फिर ये क्या कर रही हो, नजरें क्यों चुरा रही हो मुझसे? मेरी आंखों में देखकर बात करो, और मुझे जागते देखकर ही कमरे से बाहर भागने लगी थी, क्या है ये सब? मनस्वी ने सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा,
नहीं नहीं, मैं तो पहले ही वापस जा रही थी, तुम्हारे जागने से पहले ही। मेरा मतलब है, मैं बस ऐसे ही।
अच्छा, ये छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम्हारे दोस्त की वाइफ, उसे होश आया या नहीं? और वो उसकी हालत ठीक है वो आदित्य की?
उसे बात का टॉपिक चेंज करते हुए देख अनय बोला,
हाँ वो ठीक है अब सुनैना, लेकिन तुम बताओ क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो?
उसकी बात पर मनस्वी फिर से उसी तरह बोली,
मुझे क्या होगा अनय, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ।
इतना बोलते हुए वो फिर से परे देखने लगी।
अनय दोबारा से अपना चेहरा उसकी आंखों के सामने लाते हुए बोला,
कुछ नहीं हुआ तो फिर ये ऐसे नजरें क्यों चुरा रही हो? ऐसे अटक अटक कर क्यों बोल रही हो? सामना क्यों नहीं करना चाहते हो मेरा? मुझे बताओ, तुम्हें आदित्य की बातों का बुरा लगा है ना मनस्वी?
अनय की ये बात सुनते ही मनस्वी एकदम हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, बिना पलकें झपकाए। क्रमशः